अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग ये ना पूछ रहे हैं कि थ्योरी के लिए कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स जो है ना वो बता रही हूँ, जिसमें से मोस्टली जो है ना वो क्वेश्चंस हर पेपर के अंदर आते हैं। लेकिन चूंकि पूरी रोक्स आपको पता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट और किसी भी यूनिट से क्वेश्चंस जो है ना वो आ सकते हैं, बट ये कि जो मेजर चंक होता है ना वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है कि इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर हम पार्ट टू से देखें या जो वॉल्यूम वन है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ना सिस्टमिक जो ड्रग्स हैं और टॉपिकल थेरेपी उसके बारे में ना काफ़ी डिटेल में आपको नोहा होनी चाहिए। स्पेशली जो ड्रग्स के वॉइस नोट्स मैंने शेयर किए हैं और उसके साथ जो टेक्स्ट मटेरियल है वो भी मैंने इसीलिए शेयर किया है कि कभी कभी वॉइस नोट सुनने का दिल नहीं कर रहा होता तो ये जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट क्विकली। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो जितने भी ड्रग्स हैं ना अगर आप काउंट करें तो तकरीबन 20 to 30 ड्रग्स हैं जो कि जिसमें स्टीरोइड्स, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, HCQ और इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिनको आप बहुत ही यूजुअली मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं डर्मेटोलॉजी में, और उनके बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, व्हाट्स द डोज और उसके अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट्स इम्पॉर्टेंट क्या हैं, उनके फार्माकोडायनामिक्स क्या हैं, तो उसके रिलेटेड जो है ना आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस अपने अच्छी तरह से करनी है। अगर आप ड्रग्स वाला जो पोर्शन है ना उसको इटास से और स्टडी PRN से अच्छी तरह से कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप जो ये जो वॉइस नोट्स मैंने शेयर किए हैं उसके जो टेक्स्ट है आप उसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें, तो आई गेस कि कोई भी क्वेश्चन अगर ड्रग्स रिलेटेड आता है तो इंशाल्लाह वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शंस तो ओवरऑल कम्प्लीट ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी पेपर ऐसे नहीं है जिसमें इन्फेक्शंस में से कोई क्वेश्चन ना आए। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके तकरीबन 70% क्वेश्चन ना इन्फेक्शन से आए हुए होते हैं। एक पेपर आई डोंट नो कौन से ईयर का था तो उसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इन्फेक्शन से आए हुए थे। तो ये तो आपको जो इन्फेक्शंस है ना वो आपको रिपीटेडली आपने रिवाइज करना है, आपने इसको इटास अच्छी तरह से करना है क्योंकि वो आपकी कॉन्सेप्ट्स बनाती हैं। उसके अलावा अपनी अपने भी नोट्स लिखें, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अपने नोट्स इस तरह से लिखने हैं ना कि आप उसको जल्दी से रिवाइज़ कर सकें। मतलब अगर अपने वायरल इन्फेक्शन का चैप्टर रिवाइज़ करना है विद इन 1 आवर आप उसको रिवाइज़ कर सकें। आपने इस तरह के नोट्स लिखने हैं जस्ट इन बुलेट्स, द नेम ऑफ द डिज़ीज़, उसका कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, RNA है, DNA, वायरल इन्फेक्शन है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन कराएँ, क्या ट्रीटमेंट दी, दैट्स इट। बस इतने शॉर्ट नोट्स आप लोग लिखेंगे ना तो आपके ये जो चैप्टर्स हैं एक एक घंटे में रिवाइज होंगे। लास्ट डे में तो इस तरह होता है कि आप एक ही दिन के अंदर पूरा पूरा यूनिट रिवाइज कर रहे होते हैं। वो तभी होता है जब आपने अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होते हैं तो आपको उसकी पेज मेमोरी इस तरह से बनी होती है ना कि यू गो थ्रू इट क्विकली, इसी तरह ही आप चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं। तो इन्फेक्शन में तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आप स्किप कर सको, स्पेशली वायरल, बैक्टीरियल, माइकोबैक्टीरियल और सिफिलिस। ये तो इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस, लेप्रसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्रसी का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो इसमें ब्रिगेडियर आशा वाला जो एक लेक्चर है ना जिसमें आई गेस 1 घंटे का वो लेक्चर है, 1.5 आवर का, तो आप थ्योरी से 1-2 दिन पहले वो एक दफ़ा सुन लें और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो आप नोट डाउन कर लें। तो उससे आपको जो है ना आई गेस कि फिर दोबारा से रुक से तो खैर ये चैप्टर करना ही नहीं, आपने इसको अपने करना है फ्रॉम जॉपलिंग्स, तो आप वहाँ से अगर इसको रिवाइज़ कर लेना तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका ये चैप्टर रिवाइज़ हो सकता है। उसके अलावा अगर जो मेरे लॉन्ग केस के अंदर जो लेप्रेसी वाले मैंने वॉइस नोट्स शेयर किए हैं उसको भी अगर आप अच्छी तरह से सुन लें, आप उसको मेमोराइज़ कर लेना, तो आपका जो मेजर चंक है ना लेप्रेसी का वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। उससे रिलेटेड कोई भी अगर MCQ होता है ना तो आप कॉन्सेप्ट वाइज अपना वो प्रिपेयर करके आप उसको आंसर कर सकते हैं।